हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। फिलहाल झलक, जो सिद्धार्थ को गले लगाने के बाद थोड़ा सा शर्मिंदा हो गई थी, वो फटाफट से अपने होंठ काटने लगी और फिर अमित के पूछने पर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, तुम्हें इससे ज्यादा मिलने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी इम्पोर्टेंट बंदा नहीं है। ये कहने में झलक को शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने जिस तरह से सिद्धार्थ को गले लगाया था, इसीलिए उसने अपने ही जुबान से सिद्धार्थ की एक छोटी सी बेइज्जती कर दी थी। वहीं सिद्धार्थ अब झलक की ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो उठा था, लेकिन फिलहाल उसने किसी तरह का कोई रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझा। अब क्योंकि झलक अपना बैग हाथ में लेकर चल रही थी, उसने तुरंत सिद्धार्थ की ओर देखा और मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, अच्छा अच्छा सिद्धार्थ, अगर तुम यहाँ आ गए हो तो प्लीज़ तुम मेरा बैग भी उठा लो ना, मेरा बैग उठाकर लेकर आगे चलो। अब सिद्धार्थ के साथ ऑलरेडी दो गार्ड्स भी मौजूद थे। फिलहाल साथ ही साथ रोनित भी वहां आया हुआ था, जो मुस्कुराकर झलक को ही देख रहा था। अब झलक के बैग देने पर सिद्धार्थ ने इशारा करके रोनित को बैग लेने के लिए कहा और खुद उसके साथ साथ चलने लगा। वहीं अब तो झलक काफी ज्यादा खुश हो गई थी और अमित झलक को बोल रहा था, आपके रिश्तेदार तो बहुत अच्छे हैं, देखा आपका साथ देने के लिए यहाँ तक आ गया। तब झलक बोली, अरे इतना भी अच्छा नहीं है, जरूर अपने किसी मकसद से यहाँ आया होगा, मैं जानती हूँ इसको। झलक बात बात पर सिद्धार्थ को छोटा दिखाने की कोशिश कर रही थी। जब करीब 20 मिनट तक वे लोग एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, ठीक उसी वक्त झलक थोड़ा सा रुकी और सिद्धार्थ की ओर देखने लगी। अब जैसे ही उसने देखा कि सिद्धार्थ के हाथों में कोई बैग नहीं है और ना ही उसके आदमियों के या रोनित के हाथ में बैग है, झलक हैरान हो गई और वो सिद्धार्थ की ओर देखकर बोली, मेरा बैग कहाँ है, मेरे बैग के साथ क्या किया तुमने। तब सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराकर झलक की ओर देखते हुए बेपरवाही से बोला, मैं तो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूं ना, तो मैं तुम्हारा बैग क्यों लेकर आता, तुम्हारा बैग हमने वहीं छोड़ दिया। ये सुनकर झलक को ऐसा लगा मानो उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। वो तो सिद्धार्थ को बातों बातों में नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसने उसे गलती से गले लगा लिया था। उसे शर्मिंदगी से बचने के लिए वो कुछ न कुछ बोल रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि सिद्धार्थ उससे बदला इस तरह से लेगा, उसका बैग वहीं छोड़ाएगा। अब झलक टकटकी लगाकर उसे नाराजगी से घूर रही थी। सिद्धार्थ को घूरते हुए उसने कोहनी मारकर उसे नीचे की ओर अपना बैग लेने के लिए जाने के लिए कहा। उसे जाने में पूरे 20 मिनट लगे और अपना बैग लेकर जैसे ही वो वापस आई, अब उसे पूरा एक घंटा हो चुका था। जैसे ही वो वापस आई, उसने देखा कि वहां पर सिद्धार्थ के अलावा और कोई भी नहीं था। अमित और सिद्धार्थ के दोनों बॉडीगार्ड वहां से जा चुके थे। अब झलक सिद्धार्थ को एकटक देखते हुए बेरुखी से बोली, कहाँ गए सबके सब? तब सिद्धार्थ बड़े ही आराम से मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोला, सबके सब तुम्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि तुम्हें आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था। ये सुनकर झलक का दिल किया कि वो इसी वक्त सिद्धार्थ का गला दबा दे। आखिरकार जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की वजह से हुआ। लेकिन झलक ने उसे किसी तरह की कोई बात नहीं की और मुंह फुलाकर अपना बैग लेकर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसके पैर पूरी तरह से फिसलने लगे, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा कीचड़ जमा हो गया था और कीचड़ में चलने में उसे काफी परेशानी हो रही थी। ऊपर से भारी बैग उसके हाथ में था, अब झलक चल नहीं पा रही थी। फिलहाल झलक ने सोचा कि उसे इस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, उसे सिद्धार्थ खुराना की मदद लेनी होगी और वैसे भी मुसीबत के वक्त पर तो गधे को बाप बना लेना चाहिए। अचानक झलक ने अपने चेहरे पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर खुराना, आप तो मेरे मुंह बोले रिश्तेदार हैं ना, दादी ने आपको मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से पीछे कैसे हट सकते हैं। देखो मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज प्लीज। अब झलक ने दो तीन बार प्लीज प्लीज बोला तो सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई और वो चिढ़ते हुए मन में बोला, कितनी नौटंकीबाज है ये लड़की। फिलहाल सिद्धार्थ आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग ले लिया और वो झलक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही झलक थोड़ा आगे बढ़ी, उसका पैर फिर फिसल गया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। और फिर झलक ने एक पल के लिए भी सिद्धार्थ का हाथ नहीं छोड़ा और दोनों हाथ पकड़कर एक साथ आगे बढ़ने लगे। लेकिन क्योंकि वो रास्ता अभी काफी ज्यादा दूरी पर था, अब एक छोटी सी फ्लैट जगह उन्हें मिल गई थी। अब सिद्धार्थ और झलक दोनों में ही ताकत नहीं थी कि वे लोग और पैदल चल सकें। क्योंकि अब शाम हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने रात वहीं बिताने का फैसला किया। झलक के बैग में ऑलरेडी तंबू वगैरह का सामान मौजूद था। सिद्धार्थ के पास भी अपना एक छोटा सा बैग था, लेकिन झलक ने सोचा कि शायद इसके अंदर कोई प्रोटीन शेक वगैरह या फिर उसकी परफ्यूम वगैरह होगी। लेकिन झलक को कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर क्या क्या काम की चीजें हो सकती हैं। फिलहाल वे लोग तंबू लगाने के बाद झलक ने देखा कि तंबू एक है, लेकिन सोने वाले दो लोग हैं। तब झलक सिद्धार्थ की ओर देखते हुए भोली सी शक्ल बनाकर बोली, मैं तो इसके अंदर सो जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ सोएंगे? तब सिद्धार्थ ने उसे हल्की नाराजगी से घूरकर बोला, मैं कहाँ सोऊंगा? मतलब बाहर बहुत मच्छर हैं, मैं भी उसी के अंदर सोऊंगा। ये सुनकर झलक भौचक्की रह गई थी। तब वो उसे कुछ उखड़े अंदाज में बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे, आप एक जवान आदमी हैं और आप इस तरह से एक लड़की के साथ कैसे सो सकते हैं? जैसे ही झलक ने ये बोला, सिद्धार्थ ने अपने हाथ को सीने पर बांध लिया और झलक की ओर देखकर शैतानी मुस्कान लिए बोला, तुम तो इस तरह से बोल रही हो जैसे कि आज तक तुम मेरे साथ नहीं सोई हो। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बोला, झलक की आंखों के सामने वो सारी बातें याद आ गई जब सिद्धार्थ खुराना झलक के साथ इंटीमेट हुआ था। फिलहाल झलक उसे अनदेखा करके जल्दी से अपने बालों को कानों के पीछे करते परेशानी भरी आवाज में बोली, देखिए मिस्टर खुराना, शायद तुम भूल रहे हो कि दादी ने मुझे अपनी पोती मान लिया है, तो रिश्ते से हम दूर के भाई बहन हैं, तो ठीक है, इसीलिए आपको मुझसे दूरी बनाकर रखनी होगी। अब झलक के ये बोलने पर सिद्धार्थ ने उसे आईब्रो उचकाते हुए सख्त आवाज में बोला, अगर तुम्हें इतना ही खुद पर यकीन है तो तुम्हें मेरे साथ सोने में डर क्यों लग रहा है? और शायद तुम भूल रही हो कि तुम मेरे साथ ही अपार्टमेंट में रहती हो। तब झलक उसकी बात को नकारते हुए तमतमाती हुई बोली, शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका वो अपार्टमेंट 200 बीघा जमीन में फैला हुआ है और ये करीब 20 से 30 मीटर का स्पेस होगा जहाँ हम सोएंगे, समझ रहे हैं आप? ये बात सुनकर सिद्धार्थ के होठों पर एक मुस्कुराहट तैर गई और वो मस्ती के मूड में बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं है। तुम्हें यही लग रहा है कि तुम एकदम हैंडसम जवान और अमीर इंसान को देखकर अपने होश खो बैठोगी, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ सोने में डर लग रहा है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये बोला, झलक केवल हक्की बक्की होकर उसे देखती रह गई और वो मुंह फुलाकर सीधा तंबू के अंदर बेड पर चली गई।
वहीं सिद्धार्थ भी थोड़ी देर रुकने के बाद तंबू के अंदर आ गया, क्योंकि सिद्धार्थ बाहर अपनी रात नहीं गुजार सकता था और वो भी सीधा उस तंबू में जाकर लेट गया। अब झलक के पास भी कोई और रास्ता नहीं था और वो भी वहां लेट गई, लेकिन उसके शरीर में बेचैनी हो उठी थी और उसे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए झलक ने ऊपर से तंबू हटा दिया, जिससे नीला आसमान तारों से सजा हुआ उसे साफ दिखाई देने लगा। वो सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था और एक्साइटेड होकर सिद्धार्थ को भी वो सब देखने के लिए कहा। क्या रंग लाएगी सिद्धार्थ और झलक की ये हसीन मुलाकात? क्या होगा आगे? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं सिद्धार्थ और झलक के रिलेशन को क्लियर करने के, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिद्धार्थ और झलक ऑब्वियसली एक दूसरे के लवर ही होंगे ना, दोनों ही हीरो हीरोइन है यार। सो आप लोग और कुछ ना समझें, वो दादी की पोती वाला इसीलिए ऐड किया क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड थी, बट झलक और सिद्धार्थ की ही आगे चलकर शादी होगी, तो आप सब अपना साथ बनाए रखें।